نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے ابھی تک ہم نے جو چیزیں دیکھیں اس کے مطابق ہم اپنے وقت کی اہمیت سے آگاہ ہوئے, اپنے آپ کو غیر متعلق چیزوں سے نکال کے اہم چیزوں کی طرف لانے کی کوشش کی. ہم نے اہم اور فوری یعنی امپورٹنٹ اور ارجنٹ کا فرق دیکھا, اور پھر ہم نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا کہ جو ہمارے وقت کو ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹاپک اتنا ہی لمبا ہے جتنی کہ انسان کی زندگی. اس موضوع پہ جتنی بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے جاتے وقت انسان کے دل میں جو حسرت ہوگی وہ اسی بات کی ہوگی کہ جو کرنا تھا وہ کیا نہیں. اپنے حصے کا کام نہ کرنے کے جہاں اور نقصانات ہیں وہاں ایک نقصان حسرت بھی ہے. کیا کبھی آپ نے ایسا کوئی انسان دیکھا کہ جس نے تھوڑی سی سستی کی وجہ سے اپنی فلائٹ مس کر دی اور ٹکٹ نان ریفنڈیبل تھا, منی ضائع ہو گئی؟ یا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ایک کام کے کرنے میں آپ نے تھوڑی سی سستی کی اور پھر وہی کام کسی دوسرے نے کر لیا, آپ کی ساری پلاننگز ادھوری رہ گئیں اور آپ افسوس اور حسرت ہی کرتے رہ گئے کہ کاش میں چند منٹ یہ کام پہلے کر لیتی تو کوئی اور کی نہ کر پاتا. دوڑ کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو کون جیتتا ہے؟ چند لمحوں کے فرق سے لوگ جیتتے ہیں. فرسٹ اور سیکنڈ کے درجے میں جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ بھی عموماً ایک یا دو نمبر کا ہوتا ہے. تو قیامت کے دن یہ ساری حسرتیں جمع ہو جائیں گی اگر دنیا میں اپنے حصے کا کام نہ کیا. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 سے آگے تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت, یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت. قال رب ارجعون, کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا. اس درد کو محسوس کیجئے. موت کی صورت میں انسان کا یہ کہنا کہ مجھے واپس لوٹا, کیوں بھائی, کیا وجہ ہے؟ جواب کیا دے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, تاکہ میں وہ نیک عمل کروں جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے. ہرگز نہیں. انہا کلمتن ہوا قائلہا, یہ تو ایک بات ہے صرف جس کو تو کہنے والا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک. इन दो आयतों में आपने एक हसरत को महसूस किया कि दुनिया से जाते वक्त हसरत किस बात की है कि दोबारा जाऊं और वो अमल कर लूं जो नहीं करता था। ये क्या हसरत है? अपने वक्त का सही इस्तेमाल न करने वाले, अपनी दी हुई सलाहियतों को ज़ाया करने वाले मौत की सूरत में परेशान होंगे कि अल्लाह एक मौका और दे दे ताकि वो काम कर लूँ जो छोड़े हुए थे। हसरत का लफ्ज़ जो है, सुनते ही इंसान का दिल उदास हो जाता है। दुनिया में भी हसरतें इंसान को नुकसान देती हैं। हसरा यहसुरु निगाह के थकने को कहते हैं। हसरा तईर कहते हैं परिंदे के परों का गिरना। क़यामत के दिन हर शख्स हसरत कर रहा होगा, नेक भी और बद भी। नेक की हसरत क्या होगी? हदीस में आता है कि जन्नती को सिर्फ़ उन लम्हों पर हसरत होगी जो उसने अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुजारे। यानी दुनिया में इंसान अच्छा काम करते करते भी थक जाता है, लेकिन क़यामत के दिन हसरत करेगा कि काश मैंने कुछ और वक्त गुजारा होता, कुछ और काम कर लेता। हदीस में आता है कि जब सब को मौत आ जाएगी, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में ज़िबह कर देंगे। क्या आज के बाद किसी को मौत नहीं? और इस बात को सुन के अगर जन्नती खुशी से मर सकते तो मर जाते कि अब ये नेमतें हमेशा की हैं, और जहन्नमी अगर गम के मारे मर जाते तो मर जाते कि अब हमारी कोई पूछ नहीं करेगा। सूरत मरियम आयत 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अनज़िर हुम यौम अल खसरा, यानी हसरत के दिन से इनको डराओ। क़यामत के नामों में से एक नाम यौमुल हसरा है। इंसान अपने नफ्स पे हसरत कर रहा होगा, या हसरतना अला मा फर्रतना, हाय अफसोस है हम पे जो हमने कमी की अपने नफ्स के मामले में। क्या हम चाहते हैं कि हमें उस दिन हसरतें हों? बहुत सारी चीज़ें होंगी हसरत का बायस। उसमें जो बुनियादी नुक्ता बनता है वो क्या है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल न किया। और अमूमन देखा जाए तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे वक्त को ज़ाया करती हैं? हमारी दोस्तियाँ, हमारी औलादें। क़यामत के दिन इंसान अपनी दोस्तियों के बारे में भी हसरत कर रहा होगा कि काश मैंने इनको दोस्त न बनाया होता। सूरत अल-फुरकान आयत 27 और 28 में आता है, वयौम यउद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैही यकूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मा रसूलि सबीला, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फ़लानन खलीला, हाय अफसोस काश मैं आप फलां को दोस्त न बनाता। ये दोस्तियां हसरत का बायस बन जाएंगी जो आज हमारी ज़िंदगी के घंटों ले लेती हैं। हम अपने वक्त की कदर नहीं करते और कल क़यामत के दिन हसरतें करेंगे। और आगे वजह भी बताई गई, लक़द अदल्लनी अन ज़िक्री बाद इज़ जाअनी, अलबत्ता तहकीक इसने मुझे गुमराह कर दिया ज़िक्र से, यानी ज़िक्र कुरान से, नसीहत से, इसके बाद कि वो आ गया था मेरे पास। वकाना शैतानु लिल इंसानी खजूला, और इंसान के लिए शैतान तो है ही रुस्वा करने वाला। बहुत सारे लोग दीन की महफिलों से दूर रहते हैं, उसकी वजह क्या है? दोस्तियाँ, वक्त ही नहीं मिलता, हर वक्त गैदरिंग्स हैं, हर वक्त ऐसे मामले कर रहे हैं कि तवज्जो ही नहीं इस काम की तरफ। कल क़यामत के दिन इकरार करेगा कि लक़द अदल्लनी अन ज़िक्री, इसी तरह आप देखिए कि बाज़ महफिलें ऐसी होती हैं कि जहाँ इंसान सिर्फ रौनक मेले के लिए बैठता है और वहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो हदीस में आता है कि मा मिन कौमी यकूमून मिन मजलिसिल्ला यस्कुरून अल्लाह फी इल्ला अकामू अम मिसली जीफती खिमार वकान लहुम हसरतुन। कोई कौम जब किसी मजलिस से उठती है जहाँ वो अल्लाह का जिक्र नहीं किया, तो ऐसे ही है जैसे वो मुर्दा गधे की बदबूदार लाश से उठे और ये महफिल उनके लिए हसरत का बायस होगी। अल्लाह अकबर। एक हसरत जहन्नमियों को भी होगी, कब? जब जन्नतियों को अपने उन घरों में देखेंगे जो असल में उन जहन्नमियों के थे अगर वो नेक काम कर लेते, लेकिन चूंकि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए तो उनके घर भी ईमान वालों में बांट दिए जाएंगे। हदीस में आता है कि हर इंसान का एक घर जन्नत में है और एक जहन्नम में है। जब कोई जन्नत में जाता है तो उसका जहन्नम का घर खाली रहता है और वह दूसरे जहन्नमियों को मिल जाएगा। इसी तरह जो जहन्नम में चला जाता है उसका जन्नत का घर खाली रहता है और वो फिर उससे अलग कर दिया जाता है। आज दुनिया में अगर कोई हमारे घर पर कब्ज़ा कर ले तो हमें कितनी हसरत होगी। क्या जन्नत में जा के हम अपने सुपर वालों को देख देख के हसरतें नहीं करेंगे? क्या उस वक़्त ख्याल नहीं आएगा ज़िंदगी में कुछ काम और कर लेते तो शायद आज फ़ायदा हो जाता, कुछ और इस जिस्म से मेहनत करवा लेते, कुछ और काम करवा लेते ताकि काम करते रहते और होता रहता? एक हसरत काफिर की सूरत अबस सूरत नबा में अल्लाह ताला ने फरमाई, इन्ना अन्ज़रनाकुम अज़ाबन करीबा यौम यन्ज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाह व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। और जिस दिन काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी हो जाता, यानी दोबारा ना उठाया जाता, क्योंकि आज जानवर तो मरने के बाद दोबारा नहीं उठाए जा रहे, तो आज काश मैं भी कुछ ऐसे ही मामला, मेरे साथ भी कुछ कर दिया जाता कि बस मैं ख़त्म हो जाता। या लैतनी क़द्दम तुली हयाती। एक हसरत ये भी है कि इंसान कहेगा काश मैंने कुछ आगे भेजा होता अपनी इस दुनिया के लिए भी, मैं तो अपनी उसी दुनिया को संवारने में रहा, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ तो इससे सख्त मामला भी आने वाला है। करना क्या है फिर? वक्त का सही इस्तेमाल, सुस्ती छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सुस्ती एक ऐसी चीज़ है जो दीमक की तरह हमारी सारी सलाहियतों को चाट लेती है। बहुत सारे लोग सिर्फ सुस्ती की वजह से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। सच है कि झूठ? पूछें अपने आप से, क्या मैं सुस्त तो नहीं, लेज़ी तो नहीं? क्या कामों को डिले करके तो नहीं करती? अब देखिए कि कुछ लोग आज की बजाय कल में जीते हैं, कल कर लेंगे ये काम, नतीजा क्या होता है वो कल कभी नहीं आती। मैं कहीं पढ़ रही थी कि कोई एक प्रोडक्ट थी तो उन लोगों ने उसका बिज़नेस शुरू करने की कोशिश की। ज़ाहिर है कि पहले ऐसे कामों के लिए कागज़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, कोई छोटी सी उनसे गलती हो गई कानूनी किस्म की, तो जिसकी वजह से वो उस चीज़ के हकूक जो हैं वो अपने नाम पे रजिस्टर ना करा सके, किसी और शख्स ने उनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, अपने नाम वही चीज़ रजिस्टर करा ली और असल जो मालिक था उसको कानूनी नोटिस दे दिया। अब ज़ाहिर है कि उसने इनकी मिन्नत समाजत की, पेशकश की, लेकिन वो नहीं माने और असल मालिक को अपना प्रोडक्ट बंद करना पड़ा और बाद दूसरे वाले ने उससे लाखों रुपया कमा लिया। ठीक है, उसने सही किया कि गलत किया ये अलग बात है, लेकिन असल मालिक को सज़ा किस चीज़ की मिली? अपनी काहली की, सुस्ती की मिली। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी से टाल मटोल को निकाल दे, सुस्ती को निकाल दे, तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि सुस्ती आती क्यों है? ये एक बीमारी है, याद रखिए। एक नशे की तरह इंसान को चिपक जाती है। इसकी एक वजह तो ये होती है कि इंसान को अपने मकासद का यकीन ही नहीं है, कोई वाज़ा ही नहीं है। आप देखिए, एक वो बंदा जिसको आप एक डेड लाइन दे देते हैं काम करने की, और एक वो काम जो आप अपनी मर्ज़ी पे कहते हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से कर लो, क्या दोनों में फ़र्क होता है कि नहीं? ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्यों? इसलिए कि एक जगह आपने उसको डेड लाइन दे दी और दूसरी जगह वो रिलैक्स हो गया। और इंसान की फितरत है, बस अगर आप देखें कि हम यहाँ क्लास में कुरान पढ़ते हैं, अगर हमारे पास एक डेड लाइन ना हो कि हमने इतने अरसे में कुरान पाक पढ़ना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कुरान पूरा हो। 5-6 साल तो लग ही जाएँ वही कुरान जो 2 साल में भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है। वजह क्या है कि ज़िंदगी में कोई मकसद हो। फिर इसी तरह तरजीहात को मुतय्यन होना चाहिए। इंसान अहम और फौरी उमूर के बारे में शऊर की कमी का शिकार हो जाता है। इसी तरह कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो अगर अपनी ज़िंदगी से खुरच के इसको निकाल दें, जो काम करना है उसको करना है और फौरन करना है। मैं चाहूँगी कि एक सर्वे आपके साथ शेयर करूँ, आप लोग अपने कॉपी पेन निकालें और मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, आप उनके लिए जगह छोड़ते जाएं और फिर आप बाद में अपना जायज़ा लेंगे उसकी रोशनी में। फ़ायदा होगा आपको इससे, आप क्योंकि ख़ुद एहतसाबी हमेशा ही इंसान को फ़ायदा देती है। जी, अगर आप तैयार हैं तो मैं पहली बात बोलती हूँ। जी, पिछले 2 वीक में आपने कौन सी आखिरी किताब पढ़ी, यानी बुक रीडिंग के नाते से लास्ट 2 वीक्स में आपने कौन सी किताब पढ़ी, उसका नाम लिखे, और नहीं पढ़ी तो बता दें कि नहीं पढ़ी। अगला सवाल है, पिछले 6 महीने में आपने कितनी मुकम्मल किताबें पढ़ी? फिर अगला नुक्ता, वो कौन सा आखिरी मौका था जब आपने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ा, यानी नाजरा की सूरत में जो लोग पढ़ते हैं, मुकम्मल कब किया था आखिरी बार? जी, अगला सवाल है, कितने घंटे आप दिन में टीवी वॉच करते हैं? नेक्स्ट, कितने घंटे आप डेली इंटरनेट पे यूज़ करते हैं? और उसका अगला सवाल है कि इस दौरान क्या फ़ायदा उठाते हैं इससे, यानी पॉजिटिव कामों में ये घंटे इस्तेमाल होते हैं या बेकार? अगला सवाल है कि अगर आपके पास $1,000,000 हों तो आप उनका क्या करेंगे, यानी एकदम आपको कहीं से मिलियंस में डॉलर्स मिल जाएं, क्या करेंगे? आपने आखिरी सफ़र कौन सा किया और उसका मकसद क्या था? आपने कौन सा एक अच्छा काम किया कि जो खालिस आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया, किसी को उसका नहीं पता चला? आपके कितने ख्वाब हैं जो पूरे नहीं हुए? आपकी कितनी कोशिशें हैं किसी चीज़ को पाने के लिए जिनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। मैंने कितने लोगों का कर्ज़ा देना है, यानी कितने लोगों की मैं मकरूज हूँ। नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने कितनी रकम लोगों की देनी है। उसके बाद आगे आप लिखिए कि अमूमन मैं किन मसाइल का शिकार रहती हूँ और मैंने उनके हल के लिए क्या सोचा। अगला सवाल लिखिए, मैं कितने लोगों से नाराज़ हूँ, ख़ानदान या गैर ख़ानदान, ऐसी गिन के नाम एक अंदाज़ा लगा ले, यानी कितने लोग हैं कि जिनसे मुझे ये फीलिंग आती है कि मेरे ताल्लुकात कशीदा हैं। मेरा आखिरी झगड़ा किससे हुआ, वो लिख सोचिए आप अपने लिए, उसकी वजह क्या थी। और उसमें मेरा दखल कितना था। अगर मैं आगे से रिएक्ट ना करती तो क्या वो झगड़ा रुक सकता था। चलिए अब आप देखिए कि इसी तरह के कुछ और सवालात भी आप अपने पास लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। मसलन ये बात जो मैंने आपसे पूछी कि आपने आखिरी दो वीक में कौन सी आखिरी किताब पढ़ी थी, आप सोचें अगर आपने नहीं पढ़ी थी तो आपको एहसास क्या होना चाहिए कि मुझे पढ़नी चाहिए थी, मैंने अपने वक्त को ज़ाया किया। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगर आपने पिछले 6 महीने में कोई एक किताब भी मुकम्मल नहीं पढ़ी तो इसका मतलब ये कि आप चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं, आपने अपनी आदत को चेंज करना है। और पहले सवाल के जवाब में जो इसका नतीजा निकलेगा, अगर आपने 2 वीक में कोई भी किताब नहीं पढ़ी तो इससे मतलब मुराद क्या है कि आपको बुक रीडिंग की आदत डालने की ज़रूरत है अपने लिए। इसी तरह अगला जो सवाल था कि आपने कुरान पाक कब आखिरी दफ़ा पूरा किया, तो इसके लिए अगर तो रमज़ान ही है तो वो तो एक आदत भी है और रिवाज भी है, लेकिन इसके अलावा अगर कुरान पाक की तिलावत की सूरत में ये नहीं पूरा होता तो फिर उस सूरत में यानी आपने देखना है अपने आप को कि मुझे अपने इस अमल पे गौर करने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह कितने घंटे टीवी वॉच करते हैं, अगर तो ये बेमकसद है और 1 घंटे से ज़्यादा है आपके 24 घंटे में तो समझ लीजिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 24 में से जब 1 घंटा निकल जाता है तो परसेंटेज आप ख़ुद निकाल सकते हैं, ज़िंदगी में से कितने दिन निकल गए। हर महीने में 30 घंटे आपकी ज़िंदगी से निकल गए। फिर जो इंटरनेट वाला सवाल था तो इसमें भी आप देखिए, एक तो ये है कि आप लोग क्लासेस लेते हैं, ये तो है ख़ुशी की बात क्योंकि ये एक मकसद है, आप इसके साथ साथ अपना ये काम करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ चैटिंग, ईमेल्स, इधर उधर सर्च, जस्ट वॉन्डर ब्लाइंडली जिसको कहते हैं, ऐसे इधर उधर जाना, तो फिर इसको भी कम करने की ज़रूरत है। बाकी रह गया सवाल कि $1,000,000 होंगे तो आप क्या करेंगे। इससे आपने जो फौरन चीज़ आपके ज़हन में आई और आपने सोची होगी, वो असल आपकी असल थी, वही थे असल आपके ख्वाब, वही था असल आपका मसला। कुछ चीज़ें होती है जो किसी के कहने पे, एहसास दिलाने पे फिर बाद में इंसान करता है, वो नहीं। जो चीज़ एट वंस आती है ना, वो आपको लिखनी है। आप बिल्कुल अपने आप को परख जाएंगे कि वाकई मैंने अपने ऊपर खौल तो नहीं चढ़ा रखे। फिर इसी तरह के बाकी सवालात, ये सारा अमल जो है इसको कहते हैं खुद इख्तसाबी, अपना हिसाब लेना, अपने आप को चेक करना। ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को परखते नहीं हैं, तब तक हम अपना इलाज नहीं कर सकते। बस आप देखिए कि कोई डॉक्टर पे चला जाए, डॉक्टर उसकी बीमारी ना सुने, उसका मसला ना जाने, वजह ना जाने, और एकदम उसको इंजेक्शन लगा दे या उसका ऑपरेशन कर दे, ना समझी की बात होगी ना, फ़ायदा नहीं होगा। जब तक हम अपनी ज़ात को ख़ुद नहीं पहचानते, मैं कितने पानी में हूँ, मेरी शख्सियत में क्या कमी है, मुझे क्या करना है, तब तक इंसान अपने आप को बदल नहीं सकता। अगर वाकई आप चाहते हैं ना अपने आप को बदलना, तो आपको अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा। डिस्कवर, बाज़ लोग सारी दुनिया को डिस्कवर कर लेते हैं लेकिन ख़ुद को नहीं कर पाते। ऐसे लोग फिर अपने आप को हमेशा तसल्लियाँ देते रहते हैं, दूसरों के साथ मामला ऐसे रखते हैं कि जिससे दूसरे लोग जो हैं उनके ऊपर तो बड़ी गहरी नज़र हो, लेकिन ख़ुद अपने आप को नहीं कर पाते। तो लिहाजा आप अपने आप को चेक करें, क्या आपने अपने आप को शुद्र बेमुहार तो नहीं छोड़ रखा? क्या आपने अपने नफ्स के घोड़े को बांध के रखा हुआ है? ये जहाँ जिसका दिल चाहता है वहाँ आपको ले जाता है। क्योंकि आप देखिए कि हम दीन या दुनिया कहीं का भी कोई काम कर नहीं सकते जब तक हम अपने आप को बांध नहीं लेते। काम बहुत मुश्किल है। इंसान की शख्सियत, पर्सनैलिटी जितनी मुअसर होगी उतना ही वो काम कर सकेगा। अच्छा, जिसके अंदर कुछ वज़न होता है ना, वही हलचल मचाता है। खलील जिब्रान का नाम आपने सुना होगा, उसकी तमसीलात बड़ी मशहूर हैं। तो उसमें लिखते हैं कि आप तसव्वुर में करें जो बात मैं शेयर करने लगे आपसे, तालाब है यानी पानी का एक पॉन्ड है, पत्थर गिरा कहीं से उसमें, तो पानी में लहरें उठी, दूर तक किनारों में हलचल हुई। इस मंज़र को देख के साथ ही एक दरख्त था, उसे भी जोश आया कि अच्छा ये पत्थर गिरा तो पानी में इतना शोर उठा, इज़तराब उठा, चलो उसने भी एक पत्ता गिरा दिया। लेकिन जब पत्ता गिरा, ना पानी हिला, ना लहरें पैदा हुई, ना शोर उठा, तो कहते हैं कि मैं इसे देख रहा था, मैंने कहा ए बेवकूफ़, दुनिया में वही हलचल मचा सकते हैं जो अपने अंदर वजन रखते हैं। अपने अंदर वजन पैदा करना है। इंसान का वजन उसकी बातों से नहीं होता, याद रखिए, उसके हुस्न से भी नहीं होता, उसके वजनी कपड़े पहनने से भी नहीं होता, उसके भारी जेवरात पहनने से भी नहीं होता। इंसान का वजन बनता है उसकी कुछ आदतों के साथ, उसका करेक्टर बनता है कुछ चीज़ों के साथ। बास लोग जो हैं जहाँ भी होते हैं अपनी मौजूदगी का एहसास देते हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत में कुछ वज़न होता है। बास लोग ऐसे होते हैं कि कहीं भी जाते हैं ना किसी इदारे में, एकदम इदारा जो है वो तरक्की करने लगता है, सब इंतज़ाम ठीक होने लगते हैं, वही काम जो 1 घंटे में होता था वो आधे घंटे में होने लगता है। उनको देखते ही सब लोग दूसरे भी ठीक होने लगते हैं, और बाज़ लोग बिल्कुल इससे उलट काम करने वालों को भी रोक देते हैं, کوئی بات نہیں مانتا. آپ ایک ہی شخص یا ایک ہی بات دو لوگوں کو کہہ کے دیکھیں کہ یہ پیغام دوسروں کو دے دیں, آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا رسپانس مختلف آئے گا. ایک وہ جس کو اپنی بات کا یقین ہے, جو اس بات میں خود کچھ احساس رکھتا ہے, وہ اس کا بڑا پازیٹیو جواب لے کے آئے گا. لیکن وہ بندہ جو خود شیکی ہے, وہ اس بارے میں خود بخود بھی مشکوک تھا, تو دوسروں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں لے کے آتا. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی شخصیت کو مضبوط کریں. یقین کریں, بظاہر یہ باتیں آپ کو لگیں گی کہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے, لیکن دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی جتنی پرسنالٹی کی امپورٹنٹ ہے, اتنے ہی ان کے علم کی امپورٹنس ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کا علم, ایک آپ کی پرسنالٹی, اور تیسری چیز ہوتی ہے آپ کا عمل. اگر یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں گی نا, تو آپ ایک اچھے استاد بھی بن جائیں گے, آپ ایک اچھے لیڈر بھی بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھے گروپ لیڈرز بھی بن سکتے ہیں. آپ زندگی میں کسی جگہ چلے جائیں گے, لوگ آپ کو عزت دیں گے. اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ لوگ گھر سے بھی باتیں سنتے ہیں, باہر بھی باتیں سنتے ہیں. بعض لوگوں کے آنسو نہیں رکتے, ہر وقت رونا دھونا. کیوں؟ جس نے رلایا رو پڑے, کسی نے ہنسایا تو ہنس پڑے, جس نے جدر لگایا چل پڑے. یہ لوگ کچھ بہت زیادہ اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے.